जरा सोचिए, एक बेकिंग सोडा और सिरके से उफनता हुआ ज्वालामुखी, लाल रंग का झाग जो किसी भी पल पर छलक नहीं वाला है।
हाँ, और देखने में बड़ा मजेदार लगता है।
बिल्कुल। और अब जरा सोचिए कि इसका एक मगरमच्छ से क्या लेना देना है।
मगरमच्छ?
हाँ, एक ऐसा मगरमच्छ जो बीच नदी में अपने ही सबसे अच्छे दोस्त एक बंदर का दिल खाने जा रहा है।
सुनने में तो दोनों बातें एकदम अलग लगती हैं। मतलब एक तरफ घर का आंगन और विज्ञान का खेल है,
और दूसरी तरफ वो बचपन की क्लासिक कहानी जो शायद हम सबने सुनी है।
बिल्कुल।
लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इन दोनों दुनियाओं को बहुत ही शानदार तरीके से मिलाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
हाँ, और ये स्रोत वाकई बहुत खास है। ये मदर इंडिया टुडे के किड्स कॉर्नर से ली गई एक ऑडियो स्क्रिप्ट है। इसमें एक दादी माँ और उनके पोते चिंटू के बीच की बातचीत है।
सही कहा। और हमारा मकसद आज यही खोजना है कि कैसे ये पारंपरिक कहानियां और ये आधुनिक विज्ञान की गतिविधियां,
हाँ, साइंस एक्टिविटीज।
बिल्कुल, ये कैसे मिलकर बच्चों को क्राइसिस मैनेजमेंट और जिंदगी के जरूरी मूल्य सिखा सकती हैं।
क्योंकि अमूमन हम मानते हैं कि पुरानी कहानियां बस बच्चों को सुलाने के लिए होती हैं,
हाँ, या फिर विज्ञान के प्रयोग सिर्फ स्कूलों तक सीमित हैं।
लेकिन इस स्क्रिप्ट में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों के बीच ज्ञान बांटने का एक बेहतरीन उदाहरण है।
तो चलिए इस दृश्य के भीतर चलते हैं। शुरुआत होती है घर के आंगन से। चिंटू बहुत ही उत्साहित है क्योंकि वो एक मिनी वॉल्केनो यानी छोटा ज्वालामुखी बना रहा है।
बच्चों का वो उत्साह अलग ही होता है।
बिल्कुल। बैकग्राउंड में घर की रोजमर्रा की आवाजें आ रही हैं और तभी बेकिंग सोला में सिरका यानी विनेगर मिलता है।
और फिर वो लाल झाग बाहर आता है।
हाँ, और चिंटू खुशी से चिल्लाता है कि उसका पहाड़ बिल्कुल असली ज्वालामुखी की तरह फट रहा है।
और यहीं पर दादी माँ की एंट्री होती है।
सही। और दादी माँ यहाँ चिंटू की तारीफ करने के बजाय उस भौतिक उफान की तुलना नील बंदर की बुद्धि की शक्ति से कर देती हैं।
हाँ, और यहीं से कहानी शुरू होती है।
ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये रूपक थोड़ा जबरदस्ती का है।
अच्छा, आपको ऐसा लगा?
हाँ, मतलब क्या एक दादी माँ सिर्फ इसलिए विज्ञान को कहानी से जोड़ रही है ताकि बच्चा चुपचाप बैठ जाए?
ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है बच्चों का बाल मनोविज्ञान।
मतलब?
मतलब अगर हम इसके पीछे के कॉग्निटिव प्रोसेस को समझे ना, तो ये जबरदस्ती का रूपक बिल्कुल नहीं है। बच्चों का दिमाग बहुत ही ठोस और विजुअल चीजों के जरिए काम करता है,
अच्छा,
जो उन्हें सामने दिखता है।
हाँ,
अमूर्त बातें जैसे बुद्धि की ताकत या धैर्य, एक 7 साल के बच्चे को ये समझाना बहुत मुश्किल है।
ये तो है, शब्द भारी पड़ जाते हैं।
बिल्कुल। लेकिन जब चिंटू उस ज्वालामुखी को फटने और झाग को तेजी से बाहर आते हुए देखता है ना, तो वो एक तीव्र ऊर्जा महसूस कर रहा होता है।
एक एनर्जी फील कर रहा होता है।
सही। दादी माँ उसी ऊर्जा को एक विजुअल हुक की तरह इस्तेमाल करती हैं। वो उस साइंस एक्सपेरिमेंट को कहानी के नायक के साथ जोड़ देती हैं।
इसका मतलब है कि वो एक ऐसी चीज को आधार बना रही हैं जिसे बच्चा अपनी आंखों से देख सकता है,
ताकि वो उस चीज को समझ सके जिसे देखा नहीं जा सकता।
अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
इसे मनोविज्ञान में एंकरिंग कहा जाता है। अब जब दादी माँ नील बंदर की बुद्धिमानी की बात करेंगी ना, तो चिंटू के दिमाग में वो सिर्फ एक शब्द नहीं होगा,
उसके दिमाग में वो ज्वालामुखी वाला उफान होगा।
एग्जैक्टली। ये जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए बिठाने का एक बेहतरीन तरीका है।
ये सच में एक दिलचस्प नजरिया है। तो इस प्रयोग के बाद दादी माँ कहानी शुरू करती हैं, नील बंदर और कारू मगरमच्छ की कहानी।
वो कहानी जो शायद भारत के हर घर में सुनाई जाती है।
बिल्कुल। नील जो बहुत चतुर और बहादुर है, नदी किनारे जामुन के पेड़ पर रहता है,
और कारू मगरमच्छ पानी में रहता है।
हाँ, नील रोज कारू को मीठे जामुन खिलाता है। लेकिन फिर कहानी में कारू की पत्नी की एंट्री होती है,
और यहीं से असली समस्या शुरू होती है।
और यहां मुझे उस पत्नी का तर्क बहुत ही अजीब लेकिन कहानी के हिसाब से दिलचस्प लगता है।
वो जामुन वाला तर्क।
हाँ, वह सोचती है कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा।
यहां जो बात ध्यान देने वाली है ना, वो ये कि लोक कथाएं दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को छिपाती नहीं है।
सही बात है।
पत्नी का यह तर्क लालच का एक बहुत ही सटीक रूपक है। लालच किस तरह काम करता है, वो किसी भी बेतुकी बात को
अपने फायदे के लिए तर्कसंगत बना देता है।
बिल्कुल। मीठे जामुन खाने वाले का दिल भी मीठा होगा, ये कोई लॉजिक तो नहीं है।
नहीं, एकदम अजीब लॉजिक है।
लेकिन लालच से भरे दिमाग के लिए ये एक परम सत्य बन जाता है, पत्नी की बंदर का दिल खाने की जिद और कारों का फंस जाना।
लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा।
बताइए।
मतलब क्या एक छोटे बच्चे के सामने ये सब लाना थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं है?
डार्क कैसे?
अरे एक दोस्त का अपनी पत्नी के लालच में आकर दूसरे दोस्त का दिल खाने की योजना बनाना, ये बहुत ही गहरी और स्याह बात है। क्या हम इतने छोटे बच्चों को धोखे और विश्वासघात के बारे में बताकर उन्हें
डरा नहीं रहे?
हाँ
बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम चिंता है, लेकिन कहानियों का ढांचा ऐसे ही काम करता है। ये एक सेफ इन्वायरमेंट होता है बच्चों के लिए।
सुरक्षित वातावरण।
वह कैसे?
जब हम बच्चों को कहानियों के जरिए खतरे या धोखे से रूबरू कराते हैं ना,
हाँ,
तो वे असल जिंदगी के खतरे में नहीं होते,
अच्छा,
वो बस कहानी सुन रहे होते हैं।
हाँ, और कारू मगरमच्छ का चरित्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो कोई खलनायक नहीं है जो शुरू से नील को मारना चाहता था।
हाँ वो तो उसका दोस्त था।
बिल्कुल, वो एक ऐसा प्राणी है जो अपनी पत्नी की जिद और अपनी दोस्ती के बीच फंस गया है। वो कमजोर पड़ जाता है।
ये एक अच्छा पॉइंट है।
ये बच्चों को सिखाने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं वो हमेशा बुरे इंसान नहीं होते।
कभी कभी वे ऐसे लोग होते हैं जो बाहरी दबावों के आगे घुटने टेक देते हैं।
सही कहा।
यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी अचानक एक मासूम दोस्ती से एक गहरे धोखे में बदल जाती है।
और वो भी बहुत नाटकीय तरीके से।
हाँ, कारू नील को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी के बीचों बीच ले जाता है और वहां जाकर उसे सच बताता है,
जो कि एक क्लासिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है।
बिल्कुल, आसपास सिर्फ गहरा पानी है, बंदर तैरना नहीं जानता और जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया था वही उसका शिकार करने वाला है।
और यही वो क्षण है जिसके लिए दादी माँ ने वो विज्ञान का प्रयोग आधार बनाया था।
कैसे?
जरा सोचिए, जब कारू बीच नदी में नील को सच बताता है तो कोई भी इंसान या प्राणी सबसे पहले क्या करेगा?
जाहिर है वो घबरा जाएगा, पैनिक करेगा।
बिल्कुल, अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो जब हम किसी अचानक आए खतरे या भारी धोखे का सामना करते हैं ना,
तो क्या होता है?
तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिग्डाला कहते हैं, वो हावी हो जाता है।
अच्छा,
इसे एमिग्डाला हाईजैक कहा जाता है। ऐसे समय में हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और समझदारी से काम लेता है ना, वो स्विच ऑफ हो जाता है।
मतलब लॉजिक काम करना बंद कर देता है।
हाँ, इंसान फाइट और फ्लाइट यानी या तो लड़ने या फिर भाग जाने के मोड में आ जाता है।
लेकिन बीच नदी में फंसा नील ना तो लड़ सकता है और ना ही भाग सकता है।
और यही नील की सबसे बड़ी ताकत है। इन कहानियों की खूबी ये है कि ये नहीं कहती कि नील को डर नहीं लगा।
डर तो लगा ही होगा, जान पर बनाई थी।
डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन नील ने उस डर को अपने तर्क पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने एमिग्डाला को हाईजैक होने से रोक लिया।
और उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी उपस्थिति की भावना का जो इस्तेमाल किया वो तो कमाल है।
बिल्कुल,
वो रोने गिड़गिड़ाने के बजाय उसी मूर्खतापूर्ण तर्क का इस्तेमाल करता है जो मगरमच्छ की पत्नी ने गढ़ा था।
वो दिल वाला तर्क।
हाँ?
हाँ,
वो कहता है, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ा हूँ, चलो वापस ले आते हैं।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये किसी भी संकट से बाहर निकलने की सबसे बेहतरीन रणनीतियों में से एक है।
सामने वाले के तर्क की खामी को पहचानना।
हाँ, और उसी के हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना।
सच में,
चूंकि मगरमच्छ और उसकी पत्नी ये मान चुके थे कि दिल जामुन की तरह कोई भौतिक चीज है, तो नील उसी सोच का फायदा उठाता है
कि भाई दिल को पेड़ पर भी रखा जा सकता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब भावनाएं उफान पर हों तब भी अपने तर्क को कैसे सक्रिय रखा जाए।
और जैसे ही मूर्ख कारू उसे वापस किनारे पर लाता है, नील उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है।
और पेड़ पर चढ़ने के बाद वो जो कहता है,
ऊपर से वो जो बात कहता है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, धोखेबाज कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता।
ये बहुत जरूरी लाइन है।
यहाँ नील कोई महानता नहीं दिखा रहा है।
हाँ?
वो कारू को माफ नहीं कर रहा है, वो एक बहुत ही सख्त सीमा तय कर रहा है।
ये सीमा तय करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम बच्चों को सिर्फ माफ कर देना सिखाते हैं, लेकिन ये कहानी उन्हें आत्मरक्षा सिखा रही है
कि जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है उस पर दोबारा भरोसा करना समझदारी नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन जो बात इस पूरी ऑडियो स्क्रिप्ट को एक अलग स्तर पर ले जाती है वो है दादी माँ का अंतिम निष्कर्ष।
हाँ, जहाँ वो कहानी को वापस उस उफनते हुए ज्वालामुखी वाले प्रयोग से जोड़ती हैं।
सही।
वो चिंटू से कहती हैं, जैसे तुमने इस प्रयोग में सही चीजें मिलाई वैसे ही जीवन में सही सोच जरूरी है।
अगर इस संवाद की गहराई में जाए ना तो ये पूरा एक जीवन दर्शन है।
कैसे?
देखिए, बेकिंग सोडा में जब सिरका मिलता है तो उफान आता है, उसी तरह जब मुसीबत और धोखा एक साथ मिलते हैं तो घबराहट का उफान आता है।
ये बहुत ही सटीक तुलना है।
लेकिन जैसे चिंटू ने एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उसे पता था कि कौन सी चीजें मिलानी है,
वैसे ही जीवन में जब क्राइसिस आए तो पैनिक और डर को मिलाने से सिर्फ विनाशकारी विस्फोट होगा।
बिल्कुल, बचने का एकमात्र रास्ता है धैर्य और सही तर्क को मिलाना। मुसीबत में घबराने के बजाय सही सोच का इस्तेमाल करना ही असली ज्ञान है।
मतलब ज्वालामुखी का फटना एक भौतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन मुसीबत में दिमाग का फटना एक मानसिक प्रतिक्रिया है,
जिसे हम सही विचारों के अनुपात से नियंत्रित कर सकते हैं।
ये बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है, और ये सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं है। स्रोत में आगे बताया गया है कि किड्स कॉर्नर में और भी कई कहानियां हैं।
हाँ, जैसे द लायन हु लर्न टू शेयर, यानी वो शेर जिसने बांटना सीखा।
सही, और इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखना है,
जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा एक सवाल है जो मन में आता है।
पूछिए।
आज की सूचना के युग में, जहां बच्चों के पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, दुनिया भर का ज्ञान उनके अंगूठे के नीचे है, वहां इन पुरानी कहानियों की क्या जगह रह जाती है?
ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो डेटा और जानकारी का युग है।
डेटा तो हर जगह है।
हाँ, डेटा आपको बता सकता है कि ज्वालामुखी कैसे बनता है, उसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या है,
साइंस समझा सकता है।
लेकिन जब जीवन में अचानक कोई अपना धोखा दे दे, जब इंसान खुद को किसी रूपात्मक बीच नदी में फंसा हुआ पाए,
हाँ, तब क्या?
तब कोई भी सर्च इंजन ये नहीं बता सकता कि उस भावनात्मक उथल पुथल को कैसे संभालना है।
मतलब जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है।
बिल्कुल,
जानकारी आपको तथ्य देती है, लेकिन ज्ञान और खासकर मूल्यों पर आधारित ज्ञान आपको उन तथ्यों से निपटने का नजरिया देता है।
सही कहा आपने। प्राचीन कथा कहानियों की प्रासंगिकता आधुनिक युग में कम नहीं हुई है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है।
क्योंकि जानकारी तो है, लेकिन समझ कम हो रही है।
हाँ, आज हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन मानसिक लचीरापन, जिसे हम रिजिलियंस कहते हैं, वो कम होता जा रहा है।
तो ये कहानियां क्या करती हैं?
ये कहानियां बच्चों के दिमाग में मेंटल मॉडल यानी मानसिक सांचे बनाती हैं।
तो एक तरह से हम उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बचा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें एक मानसिक कवच पहना रहे हैं।
बिल्कुल, यही सही शब्द है, मानसिक कवच।
जब वे बड़े होंगे और किसी ऐसे रिश्ते या परिस्थिति में फंसेंगे जहां उन्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है,
तो उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो जामुन का पेड़, वो मगरमच्छ और वो नील बंदर की चालाकी मौजूद होगी।
वो कहानी उन्हें याद दिलाएगी कि स्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर दिमाग शांत है तो रास्ता निकाला जा सकता है।
यही इन कहानियों का असली उद्देश्य है। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने के लिए है।
जो ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित रहे वो किसी काम का नहीं।
सही, लेकिन जो ज्ञान दादी माँ और चिंटू के संवाद की तरह रोजमर्रा के विज्ञान और प्राचीन जीवन मूल्यों को जोड़ दे,
वही स्थायी होता है।
बिल्कुल,
इस पूरी चर्चा ने वाकई सोचने का नजरिया बदल दिया है। कैसे घर के आंगन में हो रहा एक साधारण सा प्रयोग एक बच्चे को ये सिखा सकता है कि संकट के समय शांत कैसे रहना है
और सही विचारों के इंग्रेडिएंट्स को कैसे मिलाना है।
हाँ, लेकिन इस पूरी कहानी और विज्ञान के प्रयोग को एक साथ रखकर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है।
अच्छा, वो क्या?
एक ऐसा विचार जो शायद इस कहानी के सीधे और सरल निष्कर्ष से थोड़ा आगे की बात करता है।
बताइए, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
देखिए, चिंटू ने बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाकर एक विस्फोट किया, लेकिन वो विस्फोट एक कटोरे या प्लेट तक सीमित था।
हाँ, वो एक नियंत्रित माहौल था।
बिल्कुल, लेकिन जब वास्तविक जीवन में किसी रिश्ते के अंदर लालच और विश्वास को एक साथ मिलाया जाता है,
तो जो भावनात्मक विस्फोट होता है वो कभी नियंत्रित नहीं होता।
सही कहा, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। नील बंदर के पास तो किनारे पर वापस लौटने के लिए उसका वो जामुन का पेड़ था,
एक सुरक्षित जगह।
हाँ, जहाँ पहुंचकर उसने अपनी जान बचा ली और सीमाएं तय कर दी।
ये एक बहुत ही जटिल स्थिति की ओर इशारा कर रहा है।
हाँ, क्योंकि असल जिंदगी में क्या हमेशा कोई ऐसा जामुन का पेड़ होता है जहाँ हर धोखे के बाद सुरक्षित वापस लौटा जा सके?
ये तो सोचने वाली बात है।
क्या हम बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि जब मुसीबत 20 नदी में घेर ले तो वहां से चतुराई से कैसे भागना है,
या फिर
हमें उन्हें ये भी सिखाने की जरूरत है कि उन रिश्तों, उन मगरमच्छों और उन परिस्थितियों को पहले ही कैसे पहचाना जाए?
मतलब बीच नदी में जाने से पहले ही?
हाँ, क्योंकि जहां से एक बार बीच नदी में जाने के बाद वापस किनारे पर आना शायद मुमकिन ही ना हो।
ये बहुत ही गहरा सवाल है।
ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ आग बुझाना सिखा रहे हैं, या ये भी कि उन जगहों की पहचान कैसे करें जहां से कभी वापसी नहीं होती।
बिल्कुल।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार किसी भी कहानी को सुनते समय सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि जीवन के एक ब्लूप्रिंट की तरह विचार किया जाना चाहिए।